ठेवला. पुस्तक सोहळवी, लेक्चर नंबर 10. ॐ नमः सिद्धेव्य, ॐ नमः सिद्धेव्य, ॐ नमः सिद्धेव्य, ॐ श्रुतात्मने नमः. नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं. मुनिय परमत्थ विद्धर, वीरैः सिद्ध विजयैः, जासन्तु आभयवदी पश्यौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो अभावियो सम्मम् आवहै नाणसिद्धिं नाणफलं चाविनिर्वाणम् तो सुवदेवयमिणमो तिक्कुत्तोपणमियूणभक्तिये गोच्छामि जहासुत्तम् चारित्तमोहस्सखवणविहीनम्. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है. सोलहवीं पुस्तक जो चारित्र मोक्ष अपना का अपना अर्थाधिकार चल रहा है, 15 नंबर का, उसमें अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 119 पर, 119. नौवे गुणस्थान का विस्तार से स्वरूप देखने पर अब यहाँ जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान संबंधी बात शुरू होती है, वैसे तो उसकी भी बात उन्होंने बताई थी, तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में स्थिति बंध आदि की चर्चा की. तो कितना है, तो नाम कर्म और गोत्र कर्म का स्थिति बंध 8 मुहूर्त, वेदनीय का 12 मुहूर्त, और तीन घातिया का और मुनि का बंध. हाँ. और उसका जो सत्व है वो भी यहाँ अंतिम समय में नाश को प्राप्त होने वाला है. अब 119 पर आए हम. कोई करेक्शन है क्या यहाँ पर 119 पर? अनुसमयो वट्ठिज्यमान, अनुसमयम मोवट्ठिज्यमान, अनुसमयमो वट्टी, ठीक के बदले टट के बदले टट चाहिए, ओवट्टी ना, हमने कल किया था ओवट्टी. यह हम पढ़ेंगे, देखो ऊपर प्राकृत में था करेक्शन, हाँ अभी नीचे पढ़ेंगे. सूक्ष्म सांप्राय के काल के संख्यात्वे भाग शेष रहने पर गुणाश्रेणी हुआ है, गुणश्रेणी शीर्ष के साथ यानी जब सूक्ष्म सांप्राय का काल व्यतीत हो रहा है, संख्यात्व भाग बाकी है, तब क्या होता है, गुणश्रेणी शीर्ष के साथ मोहनी कर्म की अंतिम फाली का नाश कर, यानी फालियों में नाश चल रहा था, स्थिति कांड घात तो हो ही रहे थे, तो उसका अंतिम फाली का जब नाश हुआ, अंतिम फाली की थी नहीं तो गुणश्रेणी और उसके ऊपर का जो कुछ वो सब नीचे आ जाता, गुणश्रेणी शीर्ष वगैरह, तो अंतिम फाली का नाश कर तदनंतर क्रम से अधस्थिति के द्वारा, क्रम से ने नीचे की एक एक जो निषेक है वो उदय में आकर खिर जाएगा, तो उसको कहेंगे अधस्थिति गलन. अधस्थिति के द्वारा अपने काल के बराबर अवशेष रही गुणश्रेणी गोपुच्छाओं को क्या क्या हुआ था याद है? सूक्ष्म संप्राय में अंतर कब नष्ट हुआ था? बोलो अश्विन, अनिवृत्तिकरण में तो पहली स्थिति दूसरी स्थिति थी, अंतर नष्ट नहीं हुआ, अमृत सूक्ष्म साम्राज्य के अंत में पहुंच गए। मेरा प्रश्न क्या है,
अंतिम थाली नष्ट हो जाएगी तो अंतर की अंतर रेखा के ऊपर की दूसरी रेखा होती है कुछ रह जाएगी, अंतिम थाली कभी मोदी के नष्ट हो जाएगी ऊपर।
सूक्ष्म सांप्रदाय के पहले समय में क्या हुआ था भूल गए? सूक्ष्म कृष्टि की रचना जो हुई थी, यानी जो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय में क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो आवली प्रमाण निषेक बाकी रहे, सूक्ष्म कृष्टि की थी, अब आवली प्रमाण निषेक रहे तब क्या हुआ था, सूक्ष्म कृष्टि के परमाणु नीचे आए, तो नीचे आकर क्या हुआ था, केवल गुणश्री नहीं पूरा अंतर में भी दिया था, और यहाँ के डबल हमने इतना देखा था विस्तार से कि ये दूसरी स्थिति है यहाँ ऊपर, ये पहली स्थिति यहाँ पर, पहले तो गुणश्रेणी रूप से दिया और फिर असंख्यात भाग द्रव्य यहाँ दिया गया, ऊपर के पूरा अंतर मिटाने के लिए और ऊपर असंख्यात बहुभाग दिया, उसमें से यहाँ एक बड़ी यानी इससे भी असंख्यात गुणा वाली यहाँ दी, ऊपर के माल से दिया और फिर ये अंतर वाली स्थिति में इस तरह से दिया और फिर ये द्वितीय स्थिति ऐसी रही, एक समय दो समय तीन समय ऐसे ये सब नीचे आता, बाद में वो मिल गए, हाँ। मेरी बात यानी अंतर नहीं था, अंतर मिट गया, सूक्ष्म सांप्राय के पहले समय से ही अंतर मिट गया और दूसरे समय से ये भी पूरी मिलकर एक गोपुच्छा हुई, यानी नीचे एक गुण श्रेणी ने एक गोपुच्छा इतना बाकी रहा। अब इसमें क्या होगा, स्थिति कांडक होगी, एक एक अंतर्मूर्त में इतनी स्थिति घटेगी फिर इतनी घटेगी फिर इतनी घटेगी, ऐसा करते करते अंतिम फाली का नंबर आया, तो अंतिम फाली किस रूप से देखो, पहली फाली दूसरी फाली तीसरी फाली इस तरह से अंतिम फाली नीचे आ गई, उसमें क्या क्या लिया, अंतिम फाली में गुण श्रेणी का शीर्ष भी लिया और अभी नीचे कितना समय बाकी रहा, सूक्ष्म सांप्राय का जितना समय शेष है उतने निषेक यहाँ बाकी रहेंगे, मान लेते 100 समय बाकी, तो यहाँ 100 समय निषेक छोड़कर पूरी अंतिम फाली नीचे आ गई, ये अभी बताया, मैंने सूक्ष्म साम्राज्य के पहले समय ही अंतर नष्ट किया था, अंतर में पूरे द्रव्य दिया देकर वहां निषेक रचना हो गई थी। अब यह हम फिर पढ़ती हूँ मैं ये वाक्य, सूक्ष्म साम्राज्य के काल के संख्यात वे भाग शेष रहने पर, यानी तब तक क्या हो रहा था, स्थिति कांड घात हो रहे, अभी अंतिम स्थिति कांड घात की अंतिम फाली है, तो उसका नंबर कब आता है, उसका संख्यातवा भाग शेष रहा, मान लेते दसवा भाग जो कुछ है इतना शेष रहा, गुणश्रेणी शीर्ष के साथ मोहनीय कर्म की अंतिम फाली का नाश कर, फाली समझते हैं ना, एक हम उसको वर्टिकल उसके चिप्स करेंगे ऐसे तो एक 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 निकलता है, तदनंतर उसके पश्चात क्या होता है, क्रम से अधस्थिति के द्वारा, अधस्थिति गलन होना चाहिए, ऊपर क्या लिखा है, गुणश्रेणी सी से एन सह मोहनीय चरम फालिम गारिय तदो जहाकम अधिदीये, ठीक है, अधस्थिति के द्वारा, अधस्थिति ने भी कितनी स्थिति बाकी रही है उसकी बात है, यानी वो गुणश्रेणी शीर्ष अंतिम फाली में इंक्लूड हो गया, हाँ क्योंकि नहीं उसमें से भी निकला था, क्योंकि कांडक पूरा कांडक जो पूरा लेते हैं, परंतु कांडक के पहली दूसरी तीसरी फाली में वहां पर भी द्रव्य दिया जाता है। कांडक के अंदर भी अपकर्षी द्रव्य कांडक के अंदर भी दिया जाता है, नीचे भी दिया जाता है। अंतिम फाली जब की होती है तो जितना कांडक उन्होंने पहले नक्की किया था वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। तो कांडक कितना हुआ, तो केवल नीचे सूक्ष्म सांप्रदाय का जितना काल अभी शेष है उतने निषेध छोड़ दिए, ऊपर सबको कांडक रूप से ग्रहण किया है और वो सब नीचे आएगी। अब कितनी स्थिति रही इसको हम कहेंगे अधस्थिति कितनी रही, तो जितना सूक्ष्म संप्रदाय का जितना काल अभी बाकी है उतने रहे, उसको कहते हैं अधस्थिति के द्वारा अपने काल के बराबर, अपना काल यानी सूक्ष्म संप्रदाय का अभी शेष काल, उसके बराबर अवशेष रही गुण श्रेणी गोपुच्छाओं को। क्योंकि ऊपर के शीर्ष का अर्थ होता है केवल एक टॉप, ऐसा नहीं होता, जितना के यथायोग्य निषेक उसके साथ चले गए, उसमें वो खाली रूप से निकल गए। अब गुणश्रेणी का कुछ भाग शेष रहा, वो कितना रहेगा, सूक्ष्म सांप्राय के काल जितना, जितना शेष बाकी उतना। तो अवशेष रही गुणश्रेणी गोपुच्छाओं को प्रति समय अपवर्तमान सूक्ष्म का सांप्रायिक स्वरूप अनुभाग कृष्टियों के साथ गलाने वाले, अभी क्या है वो तो निशे के एक से गलेगा ही गलेगा, परंतु उसका अनुभाग भी हीन हीन होकर उदय में आएगा प्रति समय। ये हमने पहले भी देखा था, पेज 10-11। अच्छा ये पहले हमने जो देखा था, क्योंकि ऊपर के उत्कृष्ट के बाकी को छोड़ दे नीचे और वो शिफ्ट होता रहता है जगन्य की तरफ। तो प्रति समय अपवर्तमान यानी प्रति समय घटने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक स्वरूप यानी सूक्ष्म पृष्टि रूप अनुभाग पृष्टियों के साथ, यानी उन पृष्टियों का अनुभाग कैसा हुआ है तो सूक्ष्म सांप्राय रूप हुआ था, उसके साथ गलाने वाले यानी एक एक निशे एक एक नीचे की स्थिति गल रही है, उदय में आकर खिल रही है सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के यानी उस जीव के अंतिम समय में। अभी यह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का अंतिम समय है, उस समय वो जीव के मोहनीय कर्म के अनुभाग और प्रदेशों के अविनाभावी क्षय को प्राप्त होने वाला, यानी उसके प्रदेशों का भी पूरा क्षय होगा और अनुभाग भी पूर्ण मिट जाएगा, क्योंकि उसके परमाणु ही नहीं रहेंगे, स्थिति सत्कर्म पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है, यानी मोहिनी की सत्ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अंतिम समय में उदय रूप है, अब वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। यहां तो केवल एक लाइन लिखी थी, मोहिनी कर्म का स्थिति सत्व नाश को प्राप्त होता है। यहां पर यह सूत्र उत्पादानुच्छेद द्रव्यातिक नय का अवलंबन लेकर प्रवृत्त हुआ यह जानना चाहिए। क्या कहते हैं, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में वो नष्ट हो गया सत्व, उस समय तो उदय रूप है, फिर भी क्या कह रहे नष्ट हो, कहां मोहिनी की सत्ता कहां नष्ट हो जाती कि सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय, परंतु अंतिम समय में तो है, तो जहां है वहां नाश कहना, इसको कहते उत्पाद अनुच्छेद यानी द्रव्यार्थिक ने, तो कहते वहां तो है सत्ता भी है उदय भी चल रहा है, तो कहते वो नहीं था ऐसा कब होगा, नेक्स्ट समय में 12वें के पहले समय, तो उसको कहेंगे अनुत्पादानुच्छेद, जब अभाव है तब कहेंगे इसका नाश हुआ, कहने की पद्धति उसको पर्यायार्थिक ने कहते। हमेशा उदाहरण आता ना रोडमल जी ने दिया है वो समय ज्ञान चंद्रिका में, आप कहां मिले थे वहीं पर बिछुड़े कहने में आता है, हम कहीं इकट्ठे हो गए हैं आप कहां बिछुड़े थे, तो हम उस गांव का उस शहर का नाम लेते हैं, वहां तो साथ में थे बिछुड़े कहां थे, एक कथन पद्धति है उसको कहते हैं उत्पादानुच्छेद। क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में सत्व और उदय रूप से विद्यमान अभी सत्व भी है उदय भी है। इस मोहिनी कर्म के निर्मूल विनाश का उपदेश पाया जाता है। जब हम बंध विच्छित्ति उदय विच्छित्ति कहते हैं वहां पर भी यही नए लगाते हैं। मिथ्यात्व में बंध विच्छित्ति देखते हैं तो जो हम सारे मिथ्यात्वादी देखते हैं 16 प्रकृतियों का नाम लेते हैं उनका तो बंध है मिथ्यात्व में, तो बंध विच्छित्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके आगे नहीं है इसलिए वहीं पर विनाश हुआ कहेंगे। यहां पर भी सत्ता है और वहीं पर विनाश कहेंगे। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का पालन करके वहीं पर अंतिम समय में यथोक्त विधि से प्रथम शुक्ल ध्यान रूप परिणामों के द्वारा, ये प्रथम शुक्ल ध्यान कौन सा है मंजूबेन? विचार, पृथक्त्व वितर्क विचार, ये कब से शुरू हुआ था? आठवें। और ये कौन सा अभी दसवें का अंत आया, कौन सा चल रहा है अभी? वही चल रहा है। अब बारहवें में कौन सा होगा? ये शुरू में यही रहेगा, शुरू में स्टार्टिंग में यही रहेगा, आगे चलकर वो एकत्व वितर्क अविचार हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं प्रथम शुक्ल ध्यान। तो यथोक्त विधि से यानी पहले बताए उस विधि से प्रथम शुक्ल ध्यान रूप परिणामों के द्वारा मोहिनी कर्म का निर्मूल विनाश करके, निर्मूल विनाश किया अभी पूरा ही पूरा विनाश हो, अभी फिर दोबारा ये उत्पन्न नहीं हो। तदनंतर समय में क्षीण कषाय गुणस्थान को प्राप्त होता है, यानी उसके पश्चात वाले दसवें का अंत समय है वो निकल गया, नेक्स्ट समय में बारहवें का पहला समय। इसमें एक ही समय में अंत और उसी समय में पहला नहीं कहना, दसवां गुणस्थान एक समय पूर्व था, अब उसके बाद उसको क्या कहेंगे, ये बारहवें गुणस्थान है। ये शपक श्रेणी है ना, ग्यारहवा जो है ना आपका प्रश्न है, दसवें से ग्यारहवें में नहीं जाता, तो जो उपशम श्रेणी हो शुरू से अलग ही उसका रास्ता है। हम कहेंगे उनके नाम भी वही है, उसकी संख्या भी आठवां नौवां दसवां कहेंगे तो हम से, परंतु उसका सारा प्रोसेस शुरू से ही अलग है, और क्षपक का आठवां नौवां दसवां उसके सारे प्रोसेस अलग है। वहां तो उपशमित करते करते ऊपर चढ़ता है, यहाँ तो क्षपणा करते करते चढ़ता है। विशुद्धि में भी अंतर है, फिर भी नाम दोनों के सेम है। तो वो आठ नौ दस और ग्यारहवें में उपशम श्रेणी वाला जाता है और फिर वापस लौटता है उसी क्रम से, एक क्षपक आठवां नौवां दसवां और फिर बारहवें में एंटर हुआ। तो कहते तदनंतर समय में क्षीण कषाय गुणस्थान को प्राप्त होता है, इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। तदो से काले परम समय क्षीण कषायो जादो, उसके बाद तदनंतर समय में प्रथम समयवर्ती क्षीण कषाय हो जाता है। क्षीण यानी जिसका कषाय अभी नष्ट हो गया है, ऐसा क्षीण कषाय गुणस्थान। ग्यारहवें का नाम मालूम है तेज, यहाँ क्षीण कषाय लिखा ना उसको क्या कहेंगे? उपशांत कषाय, मोह कहो या कषाय कहो एक ही बात, क्षीण मोह कहो या क्षीण कषाय एक ही बात, उपशांत मोह या उपशांत कषाय एक ही बात है, वो ग्यारहवें का नाम है। कषाय उपशमित हुआ है और यहाँ कषाय का क्षय हो गया है। क्षीण यानी दुबला पतला ऐसा नहीं लेना। चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय होने के अनंतर समय में द्रव्य और भाव के भेद से भिन्न जो संपूर्ण कषाय वर्ग, क्या कहते हैं? द्रव्य ने क्या समझना? अच्छा अच्छा, यहाँ संख्या नहीं होता, यहाँ तो द्रव्य नहीं, वो तो कर्म की बात है, कषाय कर्म मोहिनी कर्म और भाव, हम कहते हैं ना द्रव्य कर्म और भाव कर्म, यानी द्रव्य मोह और भाव मोह, यहाँ मोह पर घटित कर रहे, कषाय कहो या मोह कहो एक ही बात है। तो द्रव्य और भाव के भेद से भिन्न जो संपूर्ण कषाय वर्ग, उसके उपरम होने से नष्ट होने से जिसने क्षीण कषाय संज्ञा को प्राप्त किया है, ऐसा यह जीव उस जीव को ही क्षीण कषाय जीव कहेंगे। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले को हम क्षपक कहते हैं, तभी जिसने वो कषाय का संपूर्ण नाश किया है, कर्म का भी और भावों का भी परिणाम अभी नष्ट हो गए, तो उसको उस जीव को कहेंगे क्षीण कषाय जीव। ऐसा यह जीव यथाख्यात विहार शुद्धि संयम को प्राप्त कर, ये जो यथाख्यात संयम कहो यथाख्यात चारित्र कहो उसी का नाम है यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, उसको प्राप्त कर प्रथम समय में निर्ग्रंथ वीतराग गुणस्थान को प्राप्त हुआ। अभी तक निर्ग्रंथ नहीं था, आप कहेंगे क्या बात है, मुनि हुए तब से निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त की है, तो ग्रंथि किसको कहा, मुनि है ना, मुनि की ग्रंथि थी, अब पूर्ण रूप से नाश हुआ तो यहाँ निर्ग्रंथ कहेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा था परिग्रह संज्ञा कब तक होती है, दसवें तक, लेकिन निर्ग्रंथ किसको कहेंगे, अंतर बाह्य परिग्रह से रहित। तो परिग्रह अंतरंग कौन कौन से याद है, नहीं याद, हाँ लक्ष्मी बताएंगे, अंतरंग परिग्रह हाँ मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। मुनि तो निर्ग्रंथ होते हैं क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उनको निर्ग्रंथ हम कहते हैं, परंतु वहां भी संज्वलन बाकी है ना क्रोध मान माया लोभ, तो उसकी अपेक्षा से परिपूर्ण निर्ग्रंथ ने परिपूर्ण परिग्रह से रहित कब हो गए, यहाँ तो बारहवें का सपना का प्रकरण चल रहा है ना, तो हम बारहवें की बात है, तो उनको कहते हैं निर्ग्रंथ वीतराग गुणस्थान को प्राप्त हुआ। इनको अभी सर्वज्ञ दशा प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, तेजल अभी नहीं हुई, अभी बारहवें में है का, अभी ज्ञानावरणादि का उदय चल रहा है। यह यहाँ पर इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है, यहाँ पर क्षीण कषाय गुणस्थान के स्वरूप का निरूपण करने के लिए एक गाथा पाई जाती है। अंतिम होगी तो उसको संख्या क्यों नहीं दी, यह इसमें से नहीं वो गाथा, इसको एक हाँ ये यानी उद्धृत किए हुए है गाथाएं, ये आगे उसको दो तीन नंबर दिया है, यानी अन्यत्र जो कुछ है उपयोगी जानकर उन्होंने यहाँ बताया है, इसको एक नंबर दे सकते हैं, पेज 120 पर आए हैं लुप्त विधि समय, बारहवें नंबर की लास्ट लाइन ना प्राकृत की, वो ढक्का है ना उसको ढुक्का विधि समय करना, लास्ट लाइन प्राकृत की कसाय संसर्गा भावे ना ढुक्का विधि समय चेव। अब हम गाथा पढ़ेंगे, ये जो उन्होंने उद्धृत की है यहाँ पर, निस्से सखीन मोहो फलिहामल भायणुदय समचित्तो केन कसाओ भन्नै निगंथो वीयरागे। जिसने संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया है, जिसका चित्त स्फटिक मणि के निर्मल भाजन में रखे हुए जल के समान निर्मल है, किसमें रखा है स्फटिक मणि, समझते हैं स्फटिक कभी ट्रांसपेरेंट, तो उसमें वो भी कैसा निर्मल है एकदम, और भाजने ने पात्र उसमें रखे हुए जल के समान निर्मल, यानी निर्मल जल भरा है स्फटिक पात्र में उसके समान निर्मल है, ने यहाँ कोई भी मोह नहीं है बाकी। वह वीतराग जिन देव के द्वारा निर्ग्रंथ वीतराग गुणस्थान वाला कहा जाता है, यानी जिनेन्द्र भगवान उनको क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ वीतराग गुणस्थान वाला जीव है ऐसा कहते हैं। इस प्रकार ऐसे लक्षण से युक्त क्षीण कषाय गुणस्थान को प्राप्त कर करणीय विशेष का प्रतिपादन करने के लिए, करणीय ने यहाँ करने योग्य, आगे के सूत्र का अवतार करते हैं, यानी यहाँ क्या क्या कार्य होता है, पहले क्या होता था और अभी उसमें क्या हुआ डिफरेंस, अभी तो सूक्ष्म सांप्रदाय तक क्या होता था और अभी क्या हुआ, उसके बाद यहाँ बताएंगे। तादे चेव ठिदी अनुभाग पदेशस्य अबंधको, बंध चार प्रकार से होते, कौन से मालूम है? नहीं मालूम। हमेशा जो बंध होता है ना कर्मों का, उसमें क्या क्या बातें होती है, तो स्थिति बंध होता है, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध। तो स्थिति और अनुभाग तो कषाय से बनता है और प्रदेश और प्रकृति योग से बनती है। तो अभी बारहवें गुणस्थान में कितना कषाय बाकी है? क्षय हो गया, यानी अभी यहाँ स्थिति और अनुभाग बंधेगा नहीं। तो यहाँ जो प्रकृति बनती है तो कैसी बंधेगी? प्रदेश बंधेगी और उसमें स्थिति नहीं पड़ेगी, तो जो बंधे वो नाश हो गया, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं स्थिति अनुभाग प्रदेश अबंधक, यानी स्थिति का स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं हो गया उसका। हिंदी में देखते, उसी समय सभी कर्मों के स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध का अबंधक होता है। अभी सभी बंध, हाँ वो तो एक वेदनीय साता वेदनीय छोड़कर बाकी सब, इसलिए सभी कर्मों के कह दिया उन्होंने। अभी तक तो दसवें गुणस्थान में कितने कर्म बनते थे बोलो? दसवें में कितने बनते थे? सोलह बनते कि सत्रह बनते थे? कितने हुए? कितने हुए? सोलह बनते कि सत्रह बनते बोलो? सत्रह बनते थे, उसमें से सोलह की विच्छित्ति हुई। ज्ञानावरण के पांच, दर्शनावरण के चार, अंतराय के पांच, चौदह तो ये हो गए, एक यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। ये तो सोलह विच्छित्ति होने वाले के नाम बताए, पर यहाँ पर भी साता वेदनी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये सत्रह बनती थी, अब वो बारहवें में आया, तो कहते अभी सभी कर्मों का बंध रुक गया। अभी उसमें एक्सेप्शन क्या है? साता वेदनीय बंधेगी, कैसे बंधेगी? वो प्रदेश आए और चले गए, रुके नहीं, उसको नहीं, उसमें कोई स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ा। तो यहाँ कहते हैं उसी समय सभी कर्मों के स्थिति बंध, अनुभाग बंध, सभी कर्मों के में प्रकृति आ गई, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध का अबंधक होता है। अब इसको पढ़ेंगे हम। उसी अवस्था में सब कर्मों के स्थिति अनुभाग और प्रदेशों का अबंधक होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कहते कषाय ही स्थिति बंध आदि का कारण है, क्योंकि कषाय के होने पर स्थिति बंध आदि होता है, उसके अभाव में नहीं होता। एक क्या लिखा है? स्थिति आदि बंध का एक का कोई अर्थ ही नहीं, स्थिति आदि बंध का कषाय के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध है। स्थिति आदि में स्थिति बंध और अनुभाग बंध लेना, क्योंकि कषाय से स्थिति बंध होते हैं। और जो कषाय के कारण ही उस विशिष्ट प्रकृतियां वहां पर, ऑफकोर्स वो कषाय के साथ वाला योग लेना वहां पर। तो कहते उसका अन्वय व्यतिरेक संबंध, ये अन्वय व्यतिरेक किसको कहते हैं? नहीं मालूम है, अपने तो न्याय की भाषा ही हमको मालूम नहीं है, यानी जहाँ जहाँ कषाय है वहाँ वहाँ स्थिति बंध अनुभाग बंध होगा, जहाँ कषाय नहीं है वहाँ स्थिति अनुभाग बंध नहीं। उसी को कहते हैं अविनाभावी, परंतु वो अन्वय व्यतिरेक न्याय की भाषा में उसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। जहाँ जहाँ परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ धुआं अग्नि नहीं है, हाँ ऐसा कह सकते जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं होगा ही ऐसा नहीं, वहाँ तो अलग कुछ होता है, वहाँ तो धुएं का प्रेजेंस अग्नि को बताता है बस इतना। ऐसा नहीं, वो व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं होता, यानी अग्नि के बिना, अग्नि नहीं होगा तो धुआं नहीं होगा, ऐसा व्यतिरिक्त संभव है। यहाँ कैसा है, स्थिति अनुभाग बंद हो रहा है यानी कषाय है ही, और कषाय है तो स्थिति अनुभाग है ही, दोनों ओर से स्टोर, दोनों ओर से घटित होता है, इसको अन्वय व्यतिरिक्त कहेंगे। इसलिए कषाय रूप परिणाम के संश्लेष का अभाव हो जाने से इस शपक के स्थिति आदि का बंध संभव नहीं है, इस प्रकार यह अच्छी तरह कहा गया है। परंतु प्रकृति बंध योग निमित्तक क्षीण कषाय गुणस्थान में भी संभव है, योग के कारण होने वाला साता वेदनी मात्र यहाँ बंद है वो यहाँ पर हो सकता है। इसलिए क्या हाँ उसको एक समय के लिए होता है ऐसा नहीं कहेंगे, बस आता है और उसी समय नष्ट होता है।
तेरहवे गुणस्थान में भी वैसे ही होता
है, बिल्कुल ग्यारहवे बारहवे तेरहवे तीनों में भी है, यहाँ पर भी कहेंगे इरियापद आश्रव कहेंगे या इमिरियापद बंध भी कहेंगे उसको। यहाँ फिर द्रव्यार्थिक नय से उसी समय जाता है कहेंगे, पर्यायार्थिक नय से कहेंगे अभी तो आया है और नेक्स्ट समय इट इज नो मोर सो कहेंगे वो गया, ये कथन पद्धति में पे
प्रदेश बंध का भी अभाव कहा है
अन्य कर्मों के लिए कहा, साता वो तो लिखेंगे ना, पहले तो लिख देंगे बाद में जो वहाँ होता है उसको बताएंगे, वो विशेषता है उसकी। तो कहते परंतु प्रकृति बंध योग निमित्तक क्षीण कषाय गुणस्थान में भी संभव है, इसलिए उसका यहाँ प्रतिषेध नहीं किया गया है, सो वह भी वेदनीय कर्म का ही होता है, क्योंकि साता वेदनीय कर्म को छोड़कर अन्य प्रकृतियों का यहाँ पर बंधन नहीं पाया जाता। परंतु वह अभी उसके लिए क्या उदाहरण दिया, देखो सूखी दीवार पर गिरी हुई मुट्ठी भर धूल के समान, ये ड्रा है या कोई टाइल अगर आपने उसके ऊपर ऐसे रेत फेंक दी तो चिपकेगी कि नहीं, नहीं वो तत्काल गिर जाएगी, बंध के अनंतर समय में ही गल जाती है, इसको अनंत समय के लिए, क्योंकि वो नहीं रहती उसी को गल जाती कहेंगे, क्योंकि स्थिति बंध और अनुभाग बंध के कारण कषाय के संसर्ग का अभाव होने से, यानी स्थिति बंध और अनुभाग बंध के कारण कौन से हैं तो कषाय, तो कषाय के संसर्ग का अभाव होने से यहाँ कारण का अर्थ है कारणभूत, ये कारण ये उसका कषाय का विशेषण बताया, स्थिति अनुभाग बंध के कारण हुए ऐसा नहीं है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के कारणभूत ऐसे जो कषाय है उनके संसर्ग का अभाव होने से प्राप्त हुए दूसरे समय में ही इरियापथ बंध की निर्जरा का उपदेश पाया जाता है। इरियापथ है ने वो जाने के लिए आया, रुकता नहीं है, जैसे हमारे सामने से रोड पर से ट्रैफिक जा रहा है, रुकता नहीं ना, जा रहा है, आया और गया, अब उसको कहेंगे दूसरे समय में गया, कथन में वेरिएशन होगा, और वो उसी समय द्रव्यथिक से कहेंगे वो आया है और चला गया। जिस प्रकार वर्गणा खंड में इरियापथ कर्म के लक्षण की प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार विस्तार के साथ यहाँ पर भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि उस कथन से इस कथन में कोई विशेषता नहीं है। ये वर्गणा खंड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? धवला में हुआ ना, मुझे भी नंबर नहीं याद है इसका, 14 है क्या? वर्गणा खंड की अपनी बहुत विस्तार से बात हुई थी। वो पुद्गल की वर्गणा होंगे वो बात अलग, पुद्गल की वर्गणा में नहीं, वर्गणा खंड में तो ये कर्मों की बात वहां बताई। ठीक है, अपना ये हुआ था, अभी उसका दौला का नंबर मालूम नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, ये तो बंध के बारे में, स्थिति बंध, अनुभाग बंध वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। एकमात्र साता वेदिनी बनता है, उसका नाम है इरियापत बंध। आता है नेक्स्ट समय में नहीं रहता, उसको कहेंगे नेक्स्ट समय में चला गया। पहले की समस्त गुणश्रेणी निर्जराओं से इस क्षपक की गुणश्रेणी निर्जरा असंख्यात गुणी होकर प्रवृत्त होती है। पहले की समस्त गुणश्रेणी निर्जरा कौन कौन सी है? बहुत अच्छा, पहले में पहले दर्शन मोह का उपशमना हुई, वो पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर श्रावक, तीसरा पहले संयम को लिया, फिर अनंतानुबंधी के विसर्जन को लिया, दर्शन मोह की क्षपणा, उपशम श्रेणी वाले तीन अलग लिए, फिर ग्यारहवा गुणस्थान अलग लिया, फिर क्षपक श्रेणी के तीन गुणस्थान अलग लिए, फिर बारहवा गुणस्थान लिया। तो अभी तक जितनी गुण श्रेणी जो हुई थी उससे ये असंख्यात गुणा होती है, इससे ज्यादा कौन किसके होगी? जिनेन्द्र भगवान की। ये तो असंख्यात गुणा वाले ये जो स्थान बताए हैं तत्वार सूत्र में, सूत्र है इसका। देखो, पहले की समस्त गुण श्रेणी निर्जराओं से इस क्षपक की गुणश्रेणी निर्जरा असंख्यात गुणी होकर प्रवृत्त होती है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। क्योंकि कषाय सहित परिणामों के निमित्त से जो गुणश्रेणी निर्जरा होती है, उससे अकषाय परिणाम के निमित्त से जो गुणश्रेणी निर्जरा होती है, उसके असंख्यात गुणी सिद्ध होने में बाधा नहीं पाई जाती। अब क्षीण कषाय गुणस्थान के प्रथम समय में किए जाने वाले और इस सूत्र द्वारा सूचित होने वाले कार्य भेदों का अनुगम करेंगे। यहाँ क्या क्या कार्य विशेष होते, करणीय विशेष बताया था ना मैंने, कार्य विशेष यथा उसी समय तीन घाती कर्मों के अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम वाले अन्य स्थिति कांडक को ग्रहण करता है। यानी यहाँ कांडक घात तो ज्ञान वर्णादि में चल ही रहे, अभी तो मोहिनी का कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ अन्य कांडक घात, यानी पहले जो कांडक का प्रमाण था, अभी स्थिति जितनी कम होती है कांडक भी छोटे छोटे होते चले जाते, तो यहाँ नया कांडक का प्रमाण ग्रहण किया, तथा घात करने से शेष बचे उन्हीं कर्मों के अनुभाग संबंधी अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडक को ग्रहण करता है। इनके अनुभाग कांडक भी हो रहे हैं, मोहिनी में तो नहीं हो रहे थे, मोहिनी में अनुसमय अपवर्तन, प्रति समय अनुभाग का घटना चल रहा था। ज्ञानावरणादि में तो स्थिति कांडक घात भी चल रहे थे, अनुभाग कांडक घात भी हो रहे, तो यहाँ भी अन्य प्रमाण वाला अनुभाग कांडक शुरू होगा। जब जब अनुभाग कांडक घात होता है, असंख्यात बहुभाग प्रमाण अनुभाग का घात होकर अनंत वे भाग प्रमाण रह जाता है, तो कहते हैं अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडक को ग्रहण करता है। नाम गोत्र और वेदिनी कर्मों के शेष रहे स्थिति कर्म के, इनका स्थिति सत्कर्म कितना बाकी है यहाँ पर? असंख्यात वर्षों का, तो उनके असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कांडक को, असंख्यात दो भाग नहीं कहा, असंख्यातवा भाग जितनी स्थिति है उसका असंख्यातवा भाग कांडक रूप से ग्रहण किया है। तथा उन्हीं अप्रशस्त प्रकृतियों संबंधी अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडक को ग्रहण करता है। ये बात ख्याल में आई? ऊपर तो तीन घाती कर्मों की बात हो गई, स्थिति कांडक भी और अनुभाग कांडक भी बताया। नीचे नाम गोत्र और वेदनी कर्मों के जो स्थिति सत्कर्म जो है उसका स्थिति कांडक ग्रहण किया, और कहते उन्हीं अप्रशस्त प्रकृतियों, कौन सी अप्रशस्त प्रकृतियों की बात कर रहे हैं? हाँ, जो सत्ता में जो पड़ी है उसकी, उदय रूप नहीं है यहाँ पर, यहाँ कितने हाँ सत्ता रूप से भी बहुत सारी पड़ी है, तो उनका यहाँ अनुभाग कांडक घात होगा, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडक, क्योंकि हमने देखा है प्रशस्त प्रकृतियों में तो अनुभाग बढ़ता है, उसका कांडक होता नहीं है। अनुभाग किसका घटेगा? अप्रशस्त प्रकृतियों का, इसलिए अप्रशस्त नाम जोड़ दिया आगे। घाती कर्मों के साथ क्यों नहीं लगाया अप्रशस्त शब्द? वो तो अप्रशस्त ही है, उसमें कोई प्रशस्त नहीं है, इसलिए उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अघाती में अप्रशस्त कहने की जरूरत है, क्योंकि अघाती में प्रशस्त भी है और अप्रशस्त भी है, तो प्रशस्त का अनुभव नहीं घटेगा, अप्रशस्त का घटेगा। इसलिए उन्हीं के का उन्हीं कौन से नाम गोत्र और वेदनी आयु का घटेगा कि नहीं घटेगा? किसमें? आयु के, परंतु वह कौन सी आयु चल रही थी? मनुष्य आयु, मनुष्य प्रशस्त है। उन्हीं अप्रशस्त अभी उसमें अनुभाग में कोई स्थिति तो उतनी रहेगी, अनुभाग का मुझे अभी ख्याल नहीं है, तो उनका अनुभाग कांड ग्रहण करता है। तथा मिला ना नीचे से पांचवी लाइन, प्रथम समयवर्ती क्षीण कषाय क्षपक क्षव कर्मों के प्रदेश पिंड का आकर्षण करके, ये क्षव कर्मों में किसको छोड़ा? मंजुबे मोहिनी और आयु को छोड़कर बाकी क्षव कर्मों के प्रदेश पिंड का आकर्षण करके गुण श्रेणी की रचना करता हुआ उदय में थोड़े प्रदेशों का निक्षेप करता है, यानी उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी करता है ऐसा कहना उनको, तो उदय में थोड़े प्रदेश देता है, अनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेशों का निक्षेप करता है। हाँ तो
यहाँ पे गुण श्रेणी को करता होगी आकर्षण होगी,
गुण श्रेणी तो होगी जरूर, परंतु अभी वो कैसे दियावली के ऊपर दे देंगे उसको, दियावली तो नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं कहा, यहाँ तो उदय के समय से लेकर बात चल रही है, पहले यहाँ पढ़ेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी बात करके बाद में जो नहीं होता वो बता देते, तो हम पूरा पढ़ेंगे पहले, क्योंकि छह कर्मों के प्रदेश पिंड का आकर्षण करके, यानी आकर्षण तो सब में हो सकता है, गुण श्रेणी की रचना करता हुआ उदय में थोड़े प्रदेशों का निक्षेप करता है, अनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेशों का निक्षेप करता है, इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ जाता है, जब जाकर क्षीण कषाय गुणस्थान के काल के ऊपर संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थान जाकर गुणश्रेणी शीर्ष प्राप्त होता है। यानी इसका गुणश्रेणी कहाँ है, तो जितना क्षीण कषाय का काल है उसके भी ऊपर तक है। पुनः गुणश्रेणी शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में भी असंख्यात गुणे प्रदेशों को निक्षिप्त करता है, क्योंकि हमने देखा था एक असंख्यात भाग नीचे दिया जाता है गुणश्रेणी रूप से और बहुभाग ऊपर दिया जाता है। तो गुणश्रेणी के ऊपर जो मिला है उसको शीर्ष के ऊपर, वो बहुभाग में से द्रव्य आया है, परंतु जितना शीर्ष में दिया गया था उससे वो असंख्यात गुणा हो जाता है। एक मिनट, क्योंकि उसके ऊपर तो विशेषहीन रूप से दिया जाए। यहाँ क्या कहते हैं, गुणश्रेणी शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में, उसके ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणे प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। जितना गुणश्रेणी शीर्ष में निक्षेप हुआ था उससे ये असंख्यात गुणा है, परंतु जो गुणश्रेणी में देने वाला जो भाग था उसमें से इसको नहीं मिला है, वो ऊपर के बहुभाग में से मिला है। कितना मिला है, तो जितना गुणश्रेणी में दिया गया था उससे असंख्यात गुणा इसको मिला, क्योंकि अपकर्षित किए गए द्रव्य के असंख्यात बहुभाग को गुणश्रेणी शीर्ष से जो उपरिम अध्वान यानी पूरी उपरीतन स्थिति है, क्योंकि अभी अंतर्बिंदु कुछ नहीं है, उससे भाजित करने पर जो एक भाग प्राप्त हो उसको उपरिम अनंत स्थिति में निक्षिप्त करने पर वह गुणश्रेणी शीर्ष संबंधी द्रव्य से असंख्यात गुणा सिद्ध होता है, इसमें कोई बाधा नहीं पाई जाती। पहले तो गुणश्रेणी रूप से दिया और ऊपर एक निषेक में तो और असंख्यात गुणा द्रव्य आया और ऊपर विशेषहीन क्रम से दिया जाएगा, तो इसका प्रमाण कैसे निकाला? तो इतनी यहाँ की जितनी स्थिति है ना, उसमें जितने समय जितने निषेक है उसे असंख्यात बहुभाग को भाग दिया और वो विशेषहीन उसको गौण कर दे दो, फिर भी मान लेते यहाँ 1000 निषेक है तो जितना बहुभाग दिया उसके 1000 भाग करेंगे, उसमें से एक भाग प्रमाण है। ऊपर तो कम दिया है परंतु वैसे तो 1000 तो स्थूल रूप से भाग तो कर ही सकते हैं, तो फिर वो कितना हुआ, नीचे जितना दिया था उसके असंख्यात गुणा हुआ। ये अभी हम पांचवी लाइन में आए हैं। इसके बाद ऊपर सर्वत्र तब तक विशेषहीन द्रव्य का निक्षेप करता है जब तक अति स्थापनावली प्रमाण रूप से अंतिम सिद्धि को नहीं प्राप्त होता। यानी अति स्थापना छोड़कर नीचे सर्वत्र दिया जाएगा। तो दो ऊपरी मैं ऊपर पढ़ रही हूँ, सर्वत्र विशेषहीन चेव निक्षिवदी जाव अपपण चरिमठिदीम ऐच्छावणावलिया मित्रेण अपत्तोक्ति अप्राप्त होता है तब तक। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में भी अवस्थित गुणश्रेणी की प्ररूपणा करनी चाहिए। अवस्थित गुणश्रेणी क्यों, नीचे से एक एक निशे गल रहा है और ऊपर का एक एक इसमें प्रवेश कर रहा है। शेष कथन, जिस प्रकार दर्शन मोह की क्षपणा में सम्यक प्रकृति का कहा गया है उस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से गाति कर्मों का भी करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें इस कथन में कोई विशेषता नहीं है। यानी यहाँ पर भी स्थिति कांडक अनुभाग कांडक वगैरह वो चलता रहता है। इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा क्षीण कषाय गुणस्थान के काल का पालन करने वाले क्षपक के जब क्षीण कषाय गुणस्थान के काल में संख्यात्वा भाग शेष रहता है तब तीनों घाती कर्मों के अंतर्मूर्त आयाम रूप अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करता हुआ क्षीण कषाय गुणस्थान के काल प्रमाण शेष काल को छोड़कर, यानी अभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्थिति कांडक घात वगैरह हो गए, अब यहाँ जो क्षीण कषाय का थोड़ा काल बाकी है यहाँ पर क्या करेगा, अंतिम कांडक ग्रहण करेगा। तो कितना नीचे छोड़ेगा, क्षीण कषाय का जो शेष काल है उतना नीचे छोड़कर बाकी कांडक रूप से ग्रहण करेगा। तो उसको नीचे छोड़कर अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष के साथ उपरिम संख्यात गुणी स्थितियों को ग्रहण कर, गुण श्रेणी शीर्ष है ऊपर के कुछ निशेष, गुण श्रेणी में से ऊपर के कुछ निशेषों को कभी कभी एक को भी शीर्ष कहते, कभी कभी अनेकों को भी शीर्ष कहते, यानी केवल यहाँ एक ही निषेक के साथ ऊपर नहीं लेना, नहीं तो उसको एक समझे तो ऊपर संख्यात गुणे लेंगे तो संख्यात ही हो जाएगी, परंतु संख्यात समयों का ये संख्यात वाला वो कांडक नहीं होता, वो नियम से असंख्यात यानी अंतर्मूर्त प्रमाण तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए गुण श्रेणी में से कुछ निषेक जिसको हम गुण श्रेणी शीर्ष कहेंगे सबको और ऊपर का और कुछ भाग, ये सब मिलकर वहां कांडक ग्रहण किया। और नीचे कितने निषेक छोड़े, जितना बारहवे का अभी रिमेनिंग काल है उतने छोड़े। तो कहते इतने को छोड़कर, सॉरी इतने संख्यात गुणी स्थितियों को ग्रहण कर अंतिम स्थिति कांडक की रचना करता है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए। उसमें दिए जाने वाले और दिखने वाले कर्म प्रदेशों की प्ररूपणा, हमने देखा दीयमान और दृश्यमान, सम्यक प्रकृति के अंतिम स्थिति कांडक के समान जानना चाहिए। तदनंतर स्थिति कांडक के पतित होने पर तत्पश्चात तीन घाती कर्मों की गुणश्रेणी रचना नहीं होती, केवल उदयावली के बाहर की स्थिति के प्रदेश पुंज की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से उदीर्णा, छद्मस्थ के एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक करता जाता है। छद्मस्थ यानी कौन सा, ये बारहवा गुण स्थान। तो ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर ये उदीर्णा, अभी तो कांडक घात समाप्त हुए, कांडक जो होता था ना एट टाइम बहुत सारे निषेकों का घात होता था वो तो अभी सब रुक गया, गुण श्रेणी शीर्ष के साथ ऊपर सब कांडक रूप से नीचे आ गए, अब क्या होगा, मात्र उदीर्णा होगी, यानी आवली छोड़कर ऊपर के जो गुणश्रेणी के निषेक है उसमें से द्रव्य गुण आवली में आ जाएगा, उदय में आ जाएगा, उसको कहेंगे उदीर्णा। ये उदीर्णा कब तक होगी, तो मान लेते इतनी आवली है और उसके ऊपर इतने सारे निषेक है, तो ये नीचे आते 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 आवली और एक समय इतना बाकी रहेगा, तो इस समय तो ऊपर से उदीर्ण होगी, नेक्स्ट समय में क्या होगा, एक निषेक चला जाएगा, तो अभी आवली मात्र निषेक रहने पर उदीर्णा भी नहीं होगी, क्योंकि उदीर्णा तो उसे कहते ना आवली के ऊपर के नीचे आवली में आ जाए तो उदीर्ण कहते, ये ऐसी उदीर्ण अब नहीं होगी। तो यहाँ क्या कहा, अभी हमने पढ़ा देखो, नीचे से दूसरी लाइन, केवल यानी यहाँ तो कहते गुणश्रेणी रचना वगैरह सब अभी रुक जाएगी, गुणश्रेणी रचना जो पूर्व में हुई थी उसकी बात नहीं है, अब जो नया दिया जाता है ना द्रव्य गुणश्रेणी रूप से वो अभी कुछ नहीं रहेगा। तो क्या होगा, केवल उदयावली के बाहर की स्थिति के प्रदेश कुंज की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से उदीर्ण, यानी पहले समय में जितनी थी उससे दूसरे समय असंख्यात गुना, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, चौथे समय में उससे असंख्यात गुना, श्रेणी रूप से उदीर्ण होगी। छद्मस्थ के कब तक होगी, एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक करता जाता है, तो वो एक समय अभी बीत गया, फिर आवली मात्र निषेक बाकी रहेगा, अब वहां उदीर्ण नहीं होगी, उसके बाद उदीर्ण नहीं होती। केवल कर्मों की उदय रूप से ही निर्जरा होती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इसी अर्थ विशेष को स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र अवतीर्ण हुआ। एवं जाव चरिम समया हियावलिय छदुमत्थो ताव तिन्नम घादी कम्माणम उदय रघु। इस प्रकार जब तक छदमस्त के एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहता है, तब तक तीन घाती कर्मों का उदीर होता है। इस प्रकार इस अनंतर पूर्व कही गई संपूर्ण प्ररूपना से उपलक्षित यह क्षपक तब तक तीन घाती कर्मों का उदीरक होता है जब तक कि छदमस्त के एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहता है, क्योंकि उससे आगे कर्मोदय को छोड़कर घाती कर्मों की उदयावली में प्रविष्ट हुए सत्कर्म की उदीर्णा असंभव है। यह सूत्र का भावार्थ है। यानी अभी क्या है, आवली मात्र निषेक बाकी रहते तो मात्र एक उदय रूप अवस्था होगी, वो उदीर्णा वगैरह सब अभी बंद हो गई। यहाँ पर अंतर्मुहूर्त काल तक क्षीण कषाय क्षपक के प्रथम शुक्ल ध्यान के अनुसंधान पूर्वक दूसरे शुक्ल ध्यान की परिणति को विस्तार से जान लेना चाहिए। यानी यहाँ पहले नंबर का वो पृथक वितर्क विचार वाला पलट कर भी एकत्व वितर्क अविचार हो जाएगा, क्योंकि सुशुद्ध शुक्ल ध्यान रूप परिणाम के बिना उसको सुविशुद्ध शुक्ल ध्यान का कर्म का निर्मूलन करना नहीं बन सकता। यहाँ पर दो उपयोगी श्लोक नहीं, बारहवें का संख्या तो भाग रहने पर आता है पहले, पर यहाँ तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं कहाँ शुरू होता है, परंतु वह तो बारहवें के संख्या तो भाग शेष रहता है तब जाके होता है। ये इन्हें मुझे वो स्मरण से याद है। यानी अंतर्मुहूर्त तक तो प्रथम शुक्ल ध्यान हुआ और अभी उसके अनुसंधान पूर्वक अभी उसको लगते हुए द्वितीय शुक्ल ध्यान शुरू हो गया। टोटल काल ही अंतर्मुहूर्त है, अब उसमें से संख्यात बहुभाग निकल गया है, ऐसा लिखा नहीं है। और वो कहते कि उसके बिना तो हाँ कर्म का निर्मूलन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर दो उपयोगी श्लोक है। शांतक्षीण कषायस्य पूर्वज्ञस्य त्रियोगिना शुक्लाद्यां शुक्ललेशस्य मुख्यं संहननस्य तत् द्वितीयस्याद्यवत्सर्वं विशेषत्वेकयोगिना विघ्नावरणरोधार्थं क्षीणमोहस्य तत्स्मृतम्। देखो, जिसकी कषाय उपशांत या क्षीण हो गई है और जो पूर्वज्ञ है, क्या लिखा है अश्विन भाई, बारह का कहाँ लिखा है, चौदह होते हैं पूर्व यानी पूर्वों के ज्ञानी है, इतना ही पूर्व विधि जिसको कहेंगे। ये जो चौदह पूर्व में से मैक्सिमम चौदह पूर्व का ज्ञान होता है, या दस पूर्वी वाला भी चढ़ सकता है, या नौ पूर्वी वाला भी। हमने तीन बातें बताई, देखी थी आपको,
यहाँ जो दस पूर्वी होगा और कोई चौदह पूर्वी होगा, कोई ग्यारह बारह तेरह बताएगा।
उन्होंने तो मुख्य स्टेप्स बताए, उसके इन बिटवीन सब हो गए। उस दिन बात आई ना, एक अक्षर भी कम होगा उसकी बात आई थी उस दिन। यानी वहाँ ज्यादा ज्ञान
एक अक्षर का वही बोले थे तो कम हो ही गया ना।
हाँ वही कर, वो तो अंतिम समय तक हो सकता है, हमने पहले पढ़ा था अवधि ज्ञान और उनका वो अंतिम समय में प्राप्त हुआ उसको।
गर्भ का पीछे से भी देख कीर्तन कर या जो भी देवी होते तभी उनको क्या ये पूर्व ज्ञान से क्या ज्ञान से कैसे होता है
ज्ञान ज्ञान से ही होता है बाहर से होता
है तो निदान 14 पूर्व का ज्ञान नहीं तो मिनिमम 10 पूर्व का भी होगा वो उसके धारणा में पड़ा होगा ऐसे होता है कि
धारणा की कहाँ बात है
नहीं यहाँ पे तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो यहाँ पे कैसे होगा
तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए हैं ना तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए और ऐसे जो यहाँ उत्पन्न होंगे जैसे उनकी क्षाई के लिए किसी को जरूरत नहीं है या उनको देखकर किसी के समाधान होते हैं तो उनके लिए तो कुछ यथायोग्य हो जाएगा जैसे यहाँ तीसरे काल के अंत में हम देखते हैं खुलकर उत्पन्न होते हैं अब चढ़ते हुए काल में क्या होगा पांचवे काल के अंत में 1000 साल बाकी या जो कुछ यथायोग्य काल बाकी है तब जाके खुलकर उत्पन्न होते हैं अभी ऐसा होगा ना कोई पूर्व भोग के जो कुछ संस्कार से आए हुए जीव वहां पर भी समय दर्शन वगैरह होगी उनके जाति स्मरण से वगैरह हो सकता है होगी कोई चारण वृद्धिधारी कहीं से आकर उपदेश कोई देव देंगे हो सकता है वो तो अभी जो यथायोग्य उस काल में क्या होता होगा परंतु जैसे भोग भूमि में भी देखते हैं अंत यानी तीसरे काल का अंत शुरू होता है तो क्या होता है वो जाति स्मरण वाले वहां उत्पन्न होते हैं वो खुलकर होते हैं ना तो पूर्व भोग के यानी वहां से कोई विदेह क्षेत्र से समयत्व के साथ शायद समयत्व के साथ भी यहाँ उत्पन्न होते हैं और उनके जाति स्मरण से भी वो सारी बातें फिर वो लोगों को सिखाते हैं अब यथायोग्य जहां जो बातें रहती है वहां वैसे सहज रूप से बन जाता उसको कौन आएगा कहाँ से समझाएगा हमारा क्या हुआ अभी हमारे शास्त्र सब लोप होने का अर्थ कोई नहीं जानता था कांजी स्वामी जैसा कोई उत्पन्न होता है उसमें से अर्थ निकाल के बता देते हैं ऐसे ऐसे हो जाते बीच बीच में सहज रूप से जहां जैसा होना है तो निमित्त भी मिल जाएगी उसकी चिंता ही नहीं करना है नहीं उनकी क्या होती है अपनी क्या होती है वो सोच यानी शुक्ल ध्यान किसके होता है उसकी बात चल
रही
है वो तो है ना श्रेणी चढ़ने वाला ही पूर्वविद होना चाहिए शुक्ले चादे सूत्र है और वो आद्य शुक्ल ध्यान पूर्व विदों को होता है ये श्लोक उन्होंने लिखा नहीं है पूर्वज्ञ लिखा ना श्रेणी पूर्वज्ञों की होती है यानी आद्य शुक्ल ध्यान उन्हीं को होता है ये बात है 123 शुक्ल ध्यान किसको होता है तो पूर्वज्ञों को होता है ये बात यहाँ बता रहे तो ये इसका अर्थ फिर प्रति जिसकी कषाय उपशांत या क्षीण हो गई है जो पूर्वज्ञ है तीन योग वाला यानी किसी भी योग में हो सकता है मनोयोग वचन योग कायोग और शुक्ल लेशा वाला है क्योंकि 8वें गुणस्थान से शुक्ल लेशा होती है तथा जो आदि के तीन में से कोई एक सहनन वाला है उपशांत के लिए तीन में से एक सहनन वाला लिया यानी उपशम श्रेणी चढ़ने वाला या तो वज्र उपशम नारा सहनन या वज्र नारा सहनन या नारा सहनन वाला होता है या मात्र वज्र सहनन वाला है यानी ये कौन सा जीव है क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला मात्र वज्र उपशम नारा सहनन वाला है उसके प्रथम शुक्ल ध्यान होता है एक पूर्व का नहीं 9-10 पूर्व का कम से कम भी नहीं नौ पूर्व दस वो तो वहाँ उपदेश तो दस पूर्वी और चतुर्दश पूर्वी का ही आता है. अब इन्होंने नौ पूर्व की भी बात की थी, यही हमने पढ़ा था इसमें. तथा द्वितीय से लिखा ना आद्यवत सर्वम, यानी पहले शुक्ल ध्यान वत सभी है. तो द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है उसके अन्य सब बातें पहले शुक्ल ध्यान के समान होती है, मात्र उसकी इतनी विशेषता होती है उसके तीन में से कोई एक योग पाया जाता है. वहां तो तीन योग वाला क्योंकि वो पलटता है, अभी यहाँ योग पलटता नहीं है. जिसको कहें ना विचार ने पलटना और अविचार ने नहीं पलटना, जो जिस योग में है वो वही रहेगा. तीनों में से कुछ पाया जाएगा, जिसको ये का योग है उसका का योग ही कायम रहेगा, अभी योग नहीं पलटेगा. हाँ, पहला शुक्ल ध्यान कब से? आठवें गुणस्थान से अभी बारहवें तक शुरू शुरू में था, तो उसमें उनका मनोयोग से वचन योग, वचन योग से कायोग पलटना चलता था. अब द्वितीय शुक्ल ध्यान में योग पलटेगा नहीं,
बारहवें के अंत में ही.
हाँ, बारहवें के अंत में जिसको जो योग है वही रहेगा. हाँ, योग से योगांतर अभी नहीं होगा, वही तो. पलटता है, योग पलटते हैं, नक्की पलटते हैं. जब तीन में से कोई योग है ना तो एक योग पाया जाता है, यानी भी योगों का पलटना नहीं होगा. जिसको ये संक्रांति या विचार
योग नियम से पलटते हैं.
हाँ, योग नियम से पलटेंगे पहले शुक्ल ध्यान में, क्योंकि उसका काल बहुत छोटा है. एक तो ये हुई. इस प्रकार अंतराय कर्म तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का निरोध करने के लिए यह सब विशेषता क्षीण मोह जिन के जान लेनी चाहिए. का योग वचन योग है ना वहाँ पर. अभी उसको हम जिन भी कह देते हैं ना, भगवान भी कहते ही नहीं, मुनि उनको भी कहते हैं. क्षीण मोह, वहां ऊपर तो जिन शब्द नहीं आया था. विशेषस्तु एक योगिना विघ्नावरण रोधार्थम क्षीण मोहस्य तत्स्मृतम. क्षीण मोह जीव बराबर लगता है, परंतु वो जी भी रस्व, जी रस्व हो गया उनका. क्षीण मोह जी ने जैसे समय सार में उनको जिन कहा था ना, जितेंद्रिय जिन वगैरह, उस तब जितमोह जी क्षीण मोह वगैरह लिखा था ना, उस तरह से जिन कहने में कोई ऐसा दोष नहीं है, परंतु मूल श्लोक में नहीं आया था शब्द और नीचे आया. अब इससे आगे किए जाने वाले कार्यों के भेदों का प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है. क्या है? शुद्धि पत्रक 123 में सपही संपही. वो है बिंदी, बहुत अस्पष्ट है, दिख रही है. 123 में पहली लाइन में संपही शब्द था. अभी वो तेरहवे की बात बताएंगे ना विस्तार से. सूक्ष्म क्रियापति तेरहवे वाले को ध्यान ही नहीं होता है. ध्यान का फल है वो ध्यान का फल है. यहाँ क्या है, उन्होंने रोका है उपयोग एक जगह, वहाँ तो पूरा ये उपयोग रूप हो गया है. वो तो उपचार से है क्योंकि निर्जरा हो रही है इसलिए उपचार है। और अंत में भी वो सूक्ष्म क्रिया जो बताया है वो तो योगों का सूक्ष्म किया जाता है, बादर योग से सूक्ष्म योग हो जाता है। और अगर पलटना नहीं होगा तो मनोयोग से पहले मनोयोग को पलट कर कायोग कराया जाता है, फिर कायोग को सूक्ष्म किया जाता है। पलटना नहीं कहेंगे परंतु वहां अभी उपयोग पूरा ही उपयोग से पूर्व है, यानी कोई विषय को एक को पकड़ो नहीं पकड़ो ऐसी कोई बात नहीं है। वो ध्यान अलग है, ये ध्यान अलग होगा। अभी यहाँ जो बात बताएंगे ना, 13वें में आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे अधिक विस्तार से, अभी तो 12वें की बात चलेगी अपनी। तो यहाँ क्या क्या अभी कार्य हो गए 12वें में, तदो दुचरिम समय निद्दा पयलानम उदय संत उच्छेदो, तत्पश्चात क्षीण कषाय गुणस्थान के द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला की उदय और सत्व विच्छित्ति होती है। सत्व विच्छित्ति होती है, क्षय हो जाता है। सत्ता में से नष्ट होता है, वहां पर क्षय है उसका। तो टोटल क्षीण कषाय गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति क्या क्या है, बोलो बोलो। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय निद्रा प्रचलन, ये तो उसी में आए ना, दर्शनावरण में ही आए। यानी दर्शनावरण के हमने दो और चार ऐसे अलग भेद करे, यानी द्विचरम समय में दो हो गए और अंत समय में 14 हो गए, टोटल 16 हो गए उदय विच्छित्ति। और 11वें में दो की है, सहनन सहनन क्योंकि तीन सहनन से ही चढ़ता होता है। तो 11वें में तो नीचे वज्र नाराज और नाराज दो सहनन की, वहां तक उदय है, क्षपक वाले को तो होता ही नहीं वो सहनन। तो यहाँ क्या कहते हैं, क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय से पूर्व अनंतर समय, यानी पूर्व अनंतर लिया, यानी प्रायर समय लेना, उसका नाम है द्विचरम समय, यानी लास्ट बट वन। उस काल में इन दोनों दर्शनावरण संबंधी प्रकृतियों की युगपत उदय और सत्व विच्छित्ति हो जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये निद्रा प्रचला की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई थी मंजू में, 8वें के पहले वाले आपको याद है, थोड़ा थोड़ा अच्छा है आप बंध विच्छित्ति के समय थी। यहाँ उदय और सत्व विच्छित्ति, सत्व विच्छित्ति कहने से उसका क्षय हो जाता है शंका। दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घाती कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले इस क्षीण कषाय जीव के इस अवस्था विशेष में निद्रा और प्रचला प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति कैसे संभव है, क्योंकि इन प्रकृतियों के उदय से होने वाले परिणाम ध्यान परिणाम के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। आप कहते उदय की विच्छित्ति होती है नहीं, यहाँ तक उदय है ऐसा कहना पड़ेगा, तो ये कैसे संभव है, इसका प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आते ना, तो ध्यान के काल में ये निद्रा प्रचला कैसे संभव, क्योंकि वो तो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। अभी उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों का उदय इस स्थान में अव्यक्त स्वरूप है, इसलिए ध्यान में उपयुक्त हुए क्षपक जीवों में उसके स्वभाव होने में कोई विरोध नहीं पाया जाता, यानी उनके ध्यान में कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि ये तो नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ तक आते आते कितना अनुभव घट गया है इसका, तो उसको अव्यक्त कह दिया है। नॉर्मल, अच्छा उदय में होती है, क्योंकि उसका उदय या अनुदय ऐसे दो ही अवस्था देखी, निद्रा में उदय है।
गिरना होने से क्या होगा,
फिर नहीं, जिसकी उदय उसी की उदीर्ण होगी। जरूरी नहीं है कि उदीर्णा के द्वारा बहुत थोड़े परमाणु उसमें जुड़ जाते, इतनी बात।
उदय
उदय में ही होता है, यहाँ ये उदय है वो तो बहुत हीन अनुभाग वाला। और जहाँ हम वेदिनी के लिए बात करते हैं ना, क्षुधा वेदिनी, सॉरी जिसको हम कहते हैं क्षुधा तुषा के लिए, असाता वेदिनी की उदीर्णा से होता है। केवल उदीर्णा से नहीं, वहां तो उदय तो होता ही, तीव्र उदय भी कहेंगे वो। इसलिए आगे यह क्षीण कषाय क्षपक अपने काल में प्रारंभ से लेकर कितने ही काल तक, अभी ये कितने काल तक कौन सा ध्यान है वो बताते हैं। प्रारंभ से लेकर कितने ही काल तक पृथक तो वितर्क विचार, विचार यानी पलटना। संज्ञा वाले प्रथम शुक्ल ध्यान को पालन करके तदनंतर अपने काल में संख्यात वे भाग प्रमाण काल के शेष रहने पर, यानी संख्यात भाग काल तक तो पृथक वितर्क विचार रहता है। अब क्या होगा, अर्थ व्यंजन और योग, जिसको कहेंगे अर्थ से अंतार्थ, व्यंजन से व्यंजनांतर और योग से युगांतर। देखो व्यंजन शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होते हैं शब्द को भी व्यंजन कहते हैं, अक्षरों को भी, स्वर और व्यंजन को भी वो व्यंजन अलग से दिखाते हैं। ये प्रश्न किसी ने पूछा था स्वर और व्यंजन के बारे में, अभी देवलाली शिविर में, अभी देवलाली में दिवाली के समय किसी ने पूछा था। व्यंजन का वही एक अर्थ नहीं होता है, तो स्वर का नहीं ध्यान करता है, व्यंजन का करता है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे। और ये पदार्थ होते हैं ना, उसको भी व्यंजन कहते हैं, विविध व्यंजन बनाकर खाते हैं, खाने के पदार्थ, उसकी तो बात नहीं है यहाँ पर। हम तो व्यंजन से व्यंजन अंतर कई ध्यान करते हैं। हाँ तो ये कहते
हैं हमने सब पढ़ा है, उसका अर्थ इतना क्लियर नहीं होता जितना अभी हो
बड़ा था, क्योंकि वो जो श्रुत ज्ञान का जो कुछ एक शब्द का एक अर्थ है, यानी द्रव्य भी लेना है आप, यानी अकेले अपना आत्मा का ही लक्ष्य करता है, ऐसी बात नहीं है। अर्थ से अर्थांतर अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है कि पुद्गल के पन के कैसा हो, एक पदार्थ पर कैसा कॉन्सेंट्रेट हुआ है उनका, वो भी ऐसा पदार्थ बाहर ही नहीं, श्रुत ज्ञान संबंधी जो कुछ, ये छह द्रव्य की बात है, तो पुद्गल भी उनके ज्ञान का विषय हो सकता है कि नहीं हो सकता, परंतु ज्ञान का विषय कुछ है उससे कुछ नहीं फर्क है। वो राग सहित जान रहे थे पहले काल में, अभी कैसे राग रहित होकर जान रहे, वीत रागता से जान रहे, तो उसको वो ध्यान का, हम जो पलटता है उपयोग क्यों पलटता है, राग से पलटता है ये विषय का ध्यान करना, ये इसलिए हमको दोष है ये नहीं, ये हमने इसको क्यों ध्यान कर रहे हैं, वहां राग सहित जान रहे इसलिए वहां दोष है। नीचे की भूमिका में इसका लक्ष्य छोड़ो और आत्मा का करो ऐसा क्यों कहते हैं, क्या इसके लक्ष्य से वो ध्यान नहीं कहलाता, ध्यान कहलाएगा, पर वो राग उसमें जुड़ा है तो वो तो, और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक तो उसमें इष्ट अनिष्टता भी चलेगी और राग भी चलेगी, तो इसलिए उसका नीचे की भूमिका में आत्मा को जानने की मुख्यता से उपदेश होता है। परंतु यहाँ तो कोई भी विषय को जाने, वितरागता से जानना ये ध्यान का लक्षण है। तो यहाँ क्या कहते देखो, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित, संक्रांति यानी पलटना। अब आएगी ना आगे जनवरी महीने में संक्रांति, क्या होगा तभी, क्या पलटेगा, तो संक्रांति तो कहते तो है, तिल गुल खाते भी है, क्या पलटा तभी। हाँ बोलो, ये उत्तरायण दक्षिणायन कहलाते हैं ना, हाँ तो उसकी वो संक्रांति कहते हैं, उसका नाम भी है मकर संक्रांति, वो मकर राशि में वो संक्रमित होता है, हाँ प्रवेश हो जाता है। आप एग्जैक्ट पूर्व में नहीं होता, कभी कभी वो तो दक्षिण की तरफ झुकता है, कभी उत्तर की तरफ झुकता है सूर्य भी, तभी वहां उसकी लिमिट हो गई, फिर अभी उल्टा क्रम शुरू हुआ उसका, तो उसको कहेंगे संक्रांति। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित, अर्थ की संक्रांति अभी अभी तक क्या होगा, योग भी पलट सकता था, पृथक वितर्क विचार में योगों का भी पलटना होता है, क्योंकि किसी भी योग में अंतर्मूर्त तक ही रहा जाता है, और योग का जो अंतर्मूर्त है वो बहुत छोटा है, उसमें तो नियम से पलटेगा ही पलटेगा, तो कभी मनोयोग कभी वचन योग कभी काय योग ये भी पलटना होता था, और उनके जो ज्ञान का विषय भले अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त तक रहता था फिर भी उसमें पलटना होता था, इसे समय समय में तो उपयोग नहीं पलटता था, फिर भी था तो ध्यान ही, और ध्यान उसी को कहते कि अंतर्मूर्त तक उसी एक को जानते रहे उसको ध्यान कहा था, वो तो हो रहा था, परंतु विशिष्ट काल के बाद वो फिर विषय चेंज हो सकता था। व्यंजन यानी श्रुत ज्ञान का जो कोई शब्द है उसको यहाँ व्यंजन कहा है, और योग अभी उस संक्रांति से रहित होने अभी पलटना रुक गया है, एक जो कोई है वो बस वही कायम रहेगा। एकत्व वितर्क अभिचार संज्ञा वाले दूसरे शुक्ल ध्यान का अनुसंधान पूर्वक ध्यान करता हुआ, यानी दूसरा शुक्ल ध्यान चल रहा है, ध्यान का ध्यान करता ऐसा नहीं करना अभी भी पहले हमने पढ़ा, बारहवें के संख्यात बहुभाग तक तो पहला वाला शुक्ल ध्यान होता है, और बारहवें का संख्यात वा भाग रह गया तब दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, ये भी बात हमने पढ़ी थी विस्तार से, ये लब्धि सार में ही पढ़ी थी शायद। अब शुक्ल ध्यान चल रहा है, ध्यान का ध्यान करता ऐसा नहीं करना अभी बारहवें के संख्यात बहुभाग तक तो पहला वाला शुक्ल ध्यान होता है, और बारहवें का संख्यात वा भाग रह गया तब दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, ये भी बात हमने पढ़ी थी विस्तार से, ये लब्धि सार में ही पढ़ी थी शायद। अवस्थित यथाख्यात विहार शुद्धि संयम रूप परिणाम वाला होने से क्या कहा, ये कैसा परिणाम है, अवस्थित अभी तक क्या हो रहा था, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि अनंत गुणी विशुद्धि अनंत, कब तक, दसवें तक, अब क्या हुआ, पूर्ण वितराग हुआ ना, अभी कषाय ही नहीं है, तो अभी उसका अनुभव घटकर और विशुद्धि बढ़ने का कोई सवाल नहीं, परिणाम एक सदृश अवस्थित है। तो कहते अवस्थित यथाख्यात विहार शुद्धि संयम रूप परिणाम वाला होने से अवस्थित गुणश्रेणी निक्षेप द्वारा, इसलिए उसकी गुणश्रेणी भी अवस्थित है, प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जना करता हुआ अपने द्विचरण समय में निद्रा और प्रचला की सत्व और उदय विच्छित्ति करता है। इस प्रकार यह यहाँ पर सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है, सूत्र के अर्थ को ही उन्होंने और समझाया। अब क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में किए जाने वाले कार्य भेद का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। तदो नानावरण दंसनावरण अंतरायणम एक समय ने संतोदय उच्छेदो, संत ने सत्ता और उदय उच्छेदो ने उसका विच्छेद कर दिया, नाश कर दिया। तदनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों की एक समय द्वारा सत्व और उदय विच्छित्ति हो जाती है। एकत्व वितर्क अविचार ध्यान द्वारा क्रम से क्षय को प्राप्त होने वाले इन तीनों घाती कर्मों की क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में युगपत सत्व और उदय की विच्छित्ति हो जाती है। ये उसका उदय का अंतिम समय है, और यही एक निषेक बाकी है, नेक्स्ट समय में वो तो निषेक वो भी कुछ नहीं रहेगा, और जीव को 13वां गुणस्थान प्राप्त। नीचे से तीसरी 124
अवस्थित था क्या बिहार जो बिहार शब्द था क्या बिहार शुद्धि संयम
उसका वो नाम ही बताया है यथाख्यात बिहार शुद्धि संयम जब हमने वो तो गुणस्थानों के नाम भी देखे थे ना उस परिणाम को यथाख्यात बिहार शुद्धि संयम कहते हैं। बिहार का अलग से अर्थ पता नहीं है क्या ले रहे हैं ये विहार करने के अर्थ में तो नहीं है वो अब यहीं रुकेंगे शंका समाधान की शंका पूछेंगे तो समाधान भी रह जाएगा अपना कल देखेंगे इसे जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।